मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई 2017 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लिए जो मुख्य विषय के रूप में मैंने चुना है उसका शीर्षक है दिल्ली डायलॉग। हम लोग दिल्ली संवाद, हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो दिल्ली संवाद, इस पर थोड़ी सी मुख्य रूप से बातें करेंगे। और इससे पहले कि मैं उस मुख्य विषय पर आऊं, मैं थोड़ी सी न्यूज को आधार बनाकर आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। और ये वे सब चर्चाएं हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों पहली खबर थी रेडियो की भी और दूरदर्शन न्यूज की भी, और जो स्वाभाविक भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसराइल की यात्रा पर हैं और अभी वो वहां रुकेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज जो भी इसराइल के साथ समझौते होने हैं वो हो जाएंगे। तो मैं इसराइल भारत के संबंधों पर विशेष बात अभी नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम लोग स्वतंत्र रूप से विस्तार से बातें करेंगे। बस आप न्यूज सुनते रहिए और ध्यान से सुनिए, उसमें बहुत सारी बातें तो न्यूज में ही ऑलरेडी आ रही है क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है। भारत के कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार इसराइल की यात्रा पर गए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि न्यूज में भी थोड़ी सी विस्तार से बातें कही जा रही हैं। यहां तक कि न्यूज चैनल्स में तो बहुत ही डिटेल्स में बातें दिखाई जा रही हैं, एक्सपर्ट भी आकर के तरह तरह की बातें बता रहे हैं और अखबारों में भी इस यात्रा को बहुत ज्यादा जगह मिल रही है। तो आप सब उनके संपर्क में रहें, ढेर सारा मटेरियल अभी आपको मिलेगा और बाद में मैं जब ये पूरा प्रसंग संपन्न हो जाएगा तब फिर जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आपको यह भी पता लगेगा कि जब ढेर सारी चीजें किसी एक टॉपिक से संबंधित आपको दे दी जाती हैं तो सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे उसमें से अपने लिए जरूरी बातें निकालेंगे। अदरवाइज तो देखिए, जब खूब सारे समाचारों की भीड़ हो, जंगल हो, तो फिर हो सकता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि फालतू की बातों में फंसे हुए हैं और जरूरी बातें हमारी छूटती चली जा रही हैं। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इस तरह के चयन की क्षमता का होना बेहद जरूरी है। तो मित्रों उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दो तीन चीजें आप न्यूज में जान ही चुके हैं कि वहां के प्रधानमंत्री का क्या नाम है और इसराइल की राजधानी क्या है। ये दो ज्योग्राफिकल और एक पॉलिटिकल बातें हैं, नेम है, नाम है, तो आपके जेहन में होना चाहिए। मित्रों इसके बाद जो एक और खबर थी वो थी अचल कुमार ज्योति जी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। कल मैंने उनके बारे में बात की थी और 3 सदस्य और 5 सदस्य वाला आपको अंतर भी बताया था। मित्रों यहां मैं आपसे थोड़ा सा हटकर एक अलग तरीके की भी चर्चा करना चाहूंगा। खासकर मेरी ये जो चर्चा है ये सिविल सर्विस के इस बार का जो पेपर रहा है प्री का, उसमें आए हुए बदलावों को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूं। देखिए सिविल सर्विस के जो पेपर्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक तो वही होते हैं जो आपके सिलेबस के हैं, लेकिन वो उनके स्वरूप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते जाते हैं। वो परिवर्तन बड़े धीरे धीरे होते हैं और उनको पकड़ने के लिए थोड़ी सी तीखी निगाहों की जरूरत होती है। कल मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग के बारे में 5 सदस्य और 5 सदस्य वाला एक प्रश्न रखा गया था, 2 स्टेटमेंट थे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा। मित्रों अब अगर हम ये मानकर चलें कि चुनाव आयोग आप हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या मेन्स में पूछे जाने की मान लीजिए संभावना है तो वो संभावना क्या हो सकती है। देखिए वो संभावना क्या हो सकती है, थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने 3 सदस्य और 5 सदस्य की बात तो बता ही दी। अब जो मेंस के लिहाज से जो मुझे इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है वो ये कि जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, राइट, यानी कि सरकार नियुक्ति करती है, राष्ट्रपति करते हैं। इसका सीधी सी बात है कि मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिमंडल करता है का मतलब है प्रधानमंत्री करते हैं, राइट। तो अब सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ कमिश्नर हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो बिल्कुल तटस्थ होकर चुनाव कराएं, एकदम तटस्थ होकर चुनाव कराएं। चुनाव में किसी भी दल को किसी भी तरह की कोई प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और भारत के चुनाव आयोग ने इस मायने में मिसाल पेश की है। पूरी की पूरी दुनिया में वो प्रशंसा की पात्र है। एक तो जिस तटस्थता के साथ वो चुनाव करती है, जिस प्रोफेशनल तरीके से वो चुनाव करा पाती है, पूरी दुनिया में भारतीय चुनाव आयोग का नाम है। अब सवाल यहां ये उठता है दोस्तों कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयोग कह लीजिए अपनी तटस्थता को बनाए रख सकते हैं, जबकि आप देखें कि जो दूसरे निर्वाचन हैं उनके बारे में अलग तरीके की व्यवस्था है। विजिलेंस कमिश्नर, पता लगा कि एक ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं, वो उसकी नियुक्ति करते हैं। इस तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं ना कि जो चुनाव के लिए एक समूह बना दिया जाता है कि उसके मेंबर, पता लगा प्रधानमंत्री उसके मेंबर हैं, अपोजिशन के लीडर उसके मेंबर हैं, एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर, इस तरह से अलग अलग निर्वाचन के लिए अलग अलग तरह के समूह बनाए गए हैं। और उसका कारण यह है ताकि सरकार की ही पकड़ उस पर न रहे। तो ऐसा यहां क्यों नहीं किया गया है? तो यहां तो पूरी तरह से सरकार की पकड़ है। तो सरकार की पकड़ होने पर वह आयोग तटस्थ कैसे रह सकता है? मित्रों, आप लोग इस पर विचार करें, राइट। दूसरी जो बात मैं प्री के लिए है वो बताना चाहूंगा कि अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के एक सरकार में एक मंत्री हैं नरोत्तम मिश्र जी, उनके चुनाव को पेड न्यूज के कारण चुनाव आयोग ने निरस्त घोषित कर दिया, उनको अयोग्य ठहरा दिया है। अब आप देखिए कि अब आप एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की सुनवाई या दंड देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है या हाई कोर्ट को है या सुप्रीम कोर्ट को है या किसको है? एक प्रश्न हो सकता है। तो आप यहां देखिए कि चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग न केवल उसकी सुनवाई ही करता है बल्कि उस पर फैसला भी देता है। तो ये चुनाव आयोग के अधिकार के क्षेत्र की एक जो घटना है ये हाईलाइट हो रही है, तो आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह आते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए कि देश किस रूप में इस घटना को देख रहा है और चुनाव आयोग से क्या अपेक्षा करता है। तो मित्रों, आपको सिविल सर्विस की तैयारी में थोड़ा सा इस तरीके से झुकाव कर देना होगा, चीजों को बदलना होगा, प्राथमिकताएं चेंज करनी होंगी, तब जाकर के आप इनफेक्ट जिसे एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कहते हैं करते हैं वो कर पाएंगे। दोस्तों, अगली बात है जीएसटी को लेकर के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को लेकर के। आप लगातार देख रहे हैं कि आज पांचवा दिन है उसे लागू हुए, आप इसके डेवलपमेंट को देखते चले जाइए, है ना, कि सरकार को कहां दिक्कतें आ रही हैं, पब्लिक को कहां दिक्कतें आ रही हैं, व्यापारियों को कहां दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की समस्याएं सुनी जा रही हैं, सरकार ने क्या किया है। जैसे कि रेडियो न्यूज में ही आपने सुना होगा कि सरकार ने एक ग्रुप बनाया है, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जी, मतलब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, वो उसके अध्यक्ष हैं, और 15 अन्य मिनिस्ट्रीज जो कहीं ना कहीं इससे रिलेशन रखते हैं, मतलब जीएसटी से, व्यापार से, उपभोक्ताओं से, तो उनके जो सेक्रेटरीज हैं इस कमेटी के मेंबर हैं और वो मॉनिटर कर रही है पूरी स्थिति को। तो सरकार ने एक ये मैकेनिज्म बनाया है, जो कि आप सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं तो आपको ये मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। इस पर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, फेवर में आ रहे हैं, अगेंस्ट आ रहे हैं, उन पर आप बकायदे ध्यान रखिए, क्योंकि अक्टूबर के एग्जाम में मेंस में हो सकता है कि इसका एक मूल्यांकन पूछ लिया जाए कि आप इवेलुएट कीजिए। तो मित्रों, आज मैं आपको इसको लेकर के देवेंद्र शर्मा जी का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जीएसटी को लेकर के, आप उसे देखिए पढ़िएगा। मित्रों, न्यूज में तो बस इतना ही। अब जो दिल्ली डायलॉग होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको फैक्ट्स ऑफ द डे की जो मैंने बात की थी कि कभी कभी, पहले तो मैंने यही कहा था कि रोजाना मैं आपको एक तथ्य बताऊंगा, लेकिन मैंने फिर माफी मांग ली थी कि उससे मैं महसूस कर रहा हूं कि जो रिदम है वो रिदम टूट रहा है। तो मित्रों, बीच बीच में मैं आपको अच्छे फैक्ट्स अवेलेबल कराता रहूंगा, तो आज मैं आपको एक फैक्ट ऑफ द डे बता रहा हूं। दोस्तों, अभी जो मैं फैक्ट ऑफ द डे बता रहा हूं ये आर्थिक विकास से संबंधित है और एक नया रिसर्च है, और इसको फोर्थ पेपर में आप बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, फोर्थ पेपर में। वैसे भी एक बहुत ही कॉमन रिसर्च है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा शोध है। मित्रों, इस बात की आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत कम चर्चा हुई है कि जो धार्मिक विश्वास है हमारे, रिलीजियस जो फेथ है हमारे, उनका और कोई आर्थिक विकास का संबंध है, इस बारे में बहुत कम बात होती है। है ना, दोनों को बिल्कुल अलग अलग मानकर चला जाता है कि चला कि धर्म अलग है और आर्थिक विकास अलग है। तो मैंने जो नोट किया है मैं अब आपको उसे पढ़कर सुना रहा हूं, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो मित्र बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हाल ही में अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मैक क्लियरी, ये आपको नाम याद होना चाहिए, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट मैक क्लियरी, ने इस सवाल का सटीक जवाब देने का पहली बार प्रयास किया है। पश्चिम समाज के धार्मिक विश्वासों, चर्च की मौजूदगी और आर्थिक विकास के गंभीर रुझानों के विस्तृत अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि स्वर्ग नरक जैसी धार्मिक मान्यताओं का प्रगति पर असर पड़ता है। इन आस्थाओं में मजबूती विकास की राह खोलती हैं। इन आस्थाओं में यदि हमारी मजबूती है तो विकास की राह खोलती हैं, क्योंकि धर्म समाज में मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य पालन के भाव पैदा करता है। रोचक बात यह भी है कि कर्म कांड विकास पर उल्टा असर डालते हैं। ये मित्रों एक रिसर्च है और ये बहुत अच्छा रिसर्च है, आप लोगों को भी सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा। इसे आप अपने उत्तरों में, निबंध में, फोर्थ पेपर में, जो आपका एथिक्स का पेपर है, कहीं कोट कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह डेली डायलॉग। मैं इसके बारे में थोड़े सा आपको परिचय दे दूं। मित्रों ये जो डेली डायलॉग है, बेसिकली डेली का मतलब है इंडिया, और जो जिनके साथ डायलॉग हो रहा है वो है एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज, अब एशियन के बारे में आप जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनके साथ आपसी बातचीत का एक फोरम है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और अभी उसका 8वां सम्मेलन चल रहा है। आपने न्यूज में भी सुना होगा, डीडी न्यूज में इसे थोड़ा विस्तार से दिखाया भी गया था, जिसमें हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सच पूछे तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की साफ झलक दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो डायलॉग है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ है, जो हमारे पड़ोसी देश ही हैं। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों इसका जो मुख्य पर्पज है, ये एक ऐसा फोरम है जहां पर ये सारे देश इकट्ठे होते हैं और आपसी उनकी जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी होती है, राजनीतिक सुरक्षा होती है, अर्थव्यवस्था होती है और सामाजिक और सांस्कृतिक जो मामले होते हैं उनके बारे में वो आपस में डिस्कशन करते हैं। और ये जो डिस्कशन होता है भारत और एशियन कंट्रीज के देशों के बीच में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है मित्रों कि इस डिस्कशन में ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिकल लीडर ही भाग लेते हैं। देखिए इसमें अभी था ना सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक पर भी बातचीत हो रही है, तो ये बहुत ही ओपन फोरम है और इसमें जो भाग लेने वाले हैं, न्यूज में भी ये बात मेंशन की गई थी, लेकिन अगर हम उनके उनके महत्व को नहीं समझते हैं तो वो अक्सर हमसे छूट जाती है वो चीजें। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस बातचीत में जो राजनीतिक नेता हैं, राजनेता हैं, वो तो भाग लेते ही हैं, साथ ही जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो भी भाग लेते हैं, जो शोध कर रहे हैं इन क्षेत्र में, जो एकेडमिशियंस हैं, जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, वो भी भाग लेते हैं और मीडिया के लोग भी भाग लेते हैं। यानी कि इसको एक अलग अलग क्षेत्रों के संवाद का, के लोगों के संवाद का मंच बनाया गया है। मित्रों मैंने बताया कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी ये 8वां डायलॉग चल रहा है। मैं थोड़ी सी बात अब आपको एशियन कंट्रीज के बारे में बता दूं, और यहां मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं डेली डायलॉग के बारे में, डेली डायलॉग के बारे में आपने एक लाइन पढ़ ली कि इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में संवाद का एक मंच है। अब आपने पढ़ा एशियन कंट्रीज, तो जो सही तैयारी होती है वो थोड़ी सी इस मायने में बेहतर हो जाती है कि आप अब उस एशियन कंट्रीज के बारे में भी तो थोड़ा सा जान लें। आपने याद तो कर लिया कि ठीक है एशियन कंट्रीज, और हो सकता है आपको मालूम भी हो कि एशियन कंट्रीज कौन कौन संगठन है, एक संगठन है और कौन कौन से उसमें देश है, लेकिन बेहतर होगा कि एक बार दोहरा लें क्योंकि उससे फ्रेशनेस आ जाती है। तो मैं आपको एशियन कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। एशियन का मतलब ही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में। डेट भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की डेट है, वो है 8 अगस्त 1967। जो इसकी शुरुआत हुई थी मित्रों केवल 5 देशों के रूप में हुई थी। 5 इसके मेंबर थे, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 इसके फाउंडर मेंबर हैं। सिविल सर्विस प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2 स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें पता लगा कि फाउंडर मेंबर्स के नाम भी दे दिए गए हैं, और या इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया कि इसमें से कौन इसका फाउंडर मेंबर नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद मित्रों इसमें 5 मेंबर्स फिर और जुड़े और इस प्रकार अब जो एशियन कंट्रीज की जो टोटल मेंबरशिप है वो है 10। तो 5 जो नए मेंबर बाद में जुड़े हैं उनके नाम हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। तो इस तरह से टोटल 10 मेंबर इसमें हैं जो इसके फुल फ्लेज्ड मेंबर हैं। और मित्रों ये भी एक ऐसा फोरम है जिसमें ये देश आपस में मिलकर के अपने आर्थिक सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं, अपनी क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में कि उनका जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, और ये भी है कि अगर आपस में कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा वो आपस में बातचीत के जरिए कर लें, क्योंकि अगर ये आपस में बातचीत के जरिए निपटा लेंगे तो देखिए सीधी सी बात है कि जो बड़ी शक्तियां हैं उनको फिर हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा, और जैसे ही बड़ी शक्तियां हस्तक्षेप करते हैं अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया है कि अगर हमारे बीच में कोई विवाद की स्थिति होगी तो हम आपसी बातचीत के जरिए उसे निपटाएंगे। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ डायलॉग करके, जब एशियन कंट्रीज के साथ डायलॉग करता है तो उसे एक समूह मिल गया है, सीधे सीधे वो 10 देशों के साथ बातचीत कर रहा होता है। तो मित्रों ये थोड़ी सी जानकारी थी दिल्ली डायलॉग के बारे में। राइट फ्रेंड्स, तो अब मैं आता हूं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के अंतिम चरण में मित्रों, और ये अंतिम चरण है स्वागत करने का। तो मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है रवि त्रिपाठी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। तो रवि आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आज आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स तो प्रोवाइड करा ही रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। और इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर फ्रेंड्स यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।